संबंध जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है, परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं, इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं। जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं, वे मेरे देवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं, इसलिए उनको सत असत सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है। परंतु जिनके अंतःकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है, वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक यज्ञ आदि अनुष्ठान किया करते हैं, इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन भगवान आगे के दो श्लोकों में करते हैं।
त्रैवेद्यामां सोमपापोत पापा यज्ञैरेष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मास्नान्ति देव्यां दिविदेवभोगान्।
बीसवां श्लोक। वेदत्रयी में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीने वाले जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य के फल स्वरूप इंद्र लोक को प्राप्त करके वहाँ स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। व्याख्या। त्रैविद्या माम सोमपहा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान्। संसार के मनुष्य प्रायः यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं, उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे ऋक, साम और यजुः इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रैविद्या पद आया है। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है, उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं, और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं।
पंचांग युग पंचदश छदाज्ञा सर्पाकृति शोणित पर्वदेशा सा सोमवल्ली रसबंध कर्मा करोति एका दिवसोपनीता करोति सोम वृक्षोपि रसबंधवधादिकं पूर्णिमा दिवसानीत तयोर्वल्ली गुणाधिका। कृष्णे पक्षे प्रगलति दलं प्रत्यहं चैकमेकं शुक्लेप्येकं प्रभवति पुनर्लंबमाना लता स्युः तस्या कंदः कलयति तरां पूर्णिमायां गृहीतो बद्ध्वा सूतं कनकसहितं देहलोहं विधत्ते। इयं सोमकला नाम वल्ली परम दुर्लभा अनया बद्ध सूतेन्द्रो लक्षवेदी प्रजायते।
रसेन्द्र चूड़ामणि ग्रंथ से। जिसके 15 पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्प की तरह होती है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं वे गांठें जिसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णिमा के दिन लाई हुई पंचांग से युक्त अर्थात मूल डंडी पत्ते फूल और फल से युक्त सोमवल्ली पारद को बद्ध कर देती है। पूर्णिमा के दिन लाया हुआ पंचांग मूल छाल पत्ते फूल और फल इनसे युक्त सोम वृक्ष भी पारद को बांधना पारद की भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है। परंतु सोमवल्ली और सोम वृक्ष इन दोनों में सोमवल्ली अधिक गुणों वाली है। इस सोमवल्ली का कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता झड़ जाता है और शुक्ल पक्ष में पुनः प्रतिदिन एक एक पत्ता निकल आता है। इस तरह यह लता बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन इस लता का कंद निकाला जाए तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है। धतुरे के सहित इस कंद में बंधा हुआ पारद देह को लोहे की तरह दृढ़ बना देता है और इससे बंधा हुआ पारद लक्ष्य वेधी हो जाता है, अर्थात एक गुणा बद्ध पारद लाख गुणा लोहे को सोना बना देता है। यह सोम नाम की लता अत्यंत ही दुर्लभ है। उस सोम लता के रस को सोम रस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाहा कहा गया है। वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित सोम रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापहा कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा है कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए, अतः यहाँ माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्गलोक की याचना करना इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। वहाँ वे दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों का भोग करते हैं यानी अनुभव करते हैं। इनके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना सुख आराम लेना आदर सत्कार पाना महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं।